समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार मनोज। नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। वेल यस लिसनर्स, एज मनोज सेड, Valmiki Jayanti, the day dedicated to honoring the great sage and poet Maharishi Valmiki, well, the author of our epic Ramayana. So his contributions, they go beyond the Ramayana. He has inspired generations with his thoughts, wisdom, and then his teachings about righteousness, dharma, devotion, and the importance of living a virtuous life. So with that particular thought, let's begin our program Aaj Savere. Well, first, we'll provide you all the news, national, international, metro city updates. And on this very auspicious note, we are beginning. Today it's 7th of October. Let's start with the headlines.
जी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन आज सभी दलों के सदन के नेताओं से भेंट करेंगे। राज्यसभा के सभापति बनने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ श्री राधाकृष्णन की ये पहली मुलाकात है। आज की बैठक में आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखने पर भी चर्चा हो सकती है। उपराष्ट्रपति ने कल सदन के सुचारू संचालन में राज्यसभा सचिवालय के सहयोग की समीक्षा भी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि देशभर में गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये अभियान चलाने के लिए तारीख की औपचारिक घोषणा का निर्णय जल्द ही लिया जाएगा।
SIR Pan India ki baat.
So if you look at the orders issued by the Election Commission on June 24, then Pan India, which means in every state and union territory, the Election Commission has already decided to conduct the SIR. Work on that is ongoing. However, the specific dates for each state or union territory will be decided in the joint meeting of the Election Commission, and then we will inform you.
Nirnay karenge aur fir aapko batayenge.
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया था, जिससे 69 लाख मतदाताओं का नाम सूची से हटाए गए। इनमें अवैध प्रवासियों और एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र नाम रखने वालों के नाम भी शामिल है। सुधार के बाद अब बिहार में वैध मतदाताओं की संख्या 7,43,00,000 रह गई है। राज्य में 6 और 11 नवम्बर को मतदान होंगे। मतगणना 14 नवम्बर को होगी।
The NCB and SSB have decided to strengthen coordination against drug trafficking along the Indo-Nepal border. In a meeting held in New Delhi, NCB DG Anurag Garg and SSB DG Sanjay Singhal discussed enhancing intelligence sharing, joint operations and capacity building. The focus is on leveraging SSB's border presence to curb smuggling and protect youth from drug abuse, reaffirming their commitment to national security. In Chhattisgarh's Naxal-affected Bastar Division, the Central Reserve Police Force, CRPF, has distributed over 10,000 radio sets among villagers in recent days. These radio sets have been provided across all 7 districts of the Bastar Division. We have a detailed report from our correspondent, Vikalp Shukla.
Over the past few months, incidents of Maoist violence have significantly declined in Chhattisgarh's Bastar region. Security forces have established camps in interior areas. Along with combating left-wing extremism, the Central Armed Police Forces are also making continuous efforts to win the trust of local villagers. As part of this outreach, the CRPF has organized several civic action programs in recent months and distributed more than 10,000 radio sets to residents of various districts in the Bastar division. In this region of dense forest and challenging terrain, radio serves as an effective means of communication. It not only keeps people informed about government welfare schemes, programs and decisions, but also helps prevent them from being misled by Maoist propaganda. It is noteworthy that Akashvani News is the only news medium broadcasting news and current affairs programs in tribal dialects Gondi and Halbi for listeners in the Bastar division. Vikalp Shukla, Akashvani News, Raipur.
Well, now let's talk about a very important festival in Manipur. Well, Mera Ho Chongba festival. It symbolizes hill valley unity. It will be celebrated today with pomp and gaiety. Well, yes, this festival, Mera Ho Chongba. Addressing reporters at Sana Konu, Royal Palace of Manipur, ahead of the festival, state-level organizing committee of Mera Ho Chongba, Muthu Manitun, he said the festival will be held at the historic Kangla today, and around 135 village chiefs of different indigenous tribal villages, they are expected to participate in the festival. So the village leaders, they arrived at Imphal on Monday. This happened yesterday. And the Manipur king was also Rajya Sabha MP Maharaja Lee Shemba Shanauba, the Rajya Sabha MP, and formally received them at Manipur Royal Palace. So today in the morning, Maharaja Lee Shemba Shanauba will lead a ritual march involving tribal village chiefs up to the historic Kangla, where traditional rituals including Mera Mentongba, these are the ritualistic practices, Yen Hong Tamba, the exchange of gifts among the tribal village chiefs and valley people, this would be held.
मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तर पश्चिम भारत में भी तेज वर्षा की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। अगले दो तीन दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरल, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
Yes, and it has been raining since night, I believe, right? And yesterday as well. Now let's give our listeners the sports updates. In the women's ODI World Cup cricket, South Africa defeated New Zealand by 6 wickets at Holkar Stadium in Indore last night. South Africa comfortably surpassed the target of 232 runs, scoring 234 runs for 4 in 40.5 overs. So today, England will take on Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati, and the match, it is scheduled to begin at 3 p.m. Indian Standard Time.
और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचार। पहले दिल्ली की खबर। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे मरम्मत कार्यों के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि इन दिनों में जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी या कम दबाव पर उपलब्ध होगी। प्रभावित क्षेत्रों में सरस्वती विहार, शारदा निकेतन, सैनिक विहार, हर्ष विहार, लोक विहार, पश्चिम विहार और पीतमपुरा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अशोक विहार फेज 1, 2, 3, त्रिनगर, रामपुरा, लॉरेंस रोड, निमरी कॉलोनी, भारत नगर और लॉरेंस रोड बूस्टर पंपिंग स्टेशन के कमांड क्षेत्र में भी जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी रखने का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 011-123-63-4469 और 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। दिल्ली की एक और खबर, दिल्ली सरकार ने वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी में छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि अब से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हरेक वर्ष छुट्टी होगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस वर्ष वाल्मीकि जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारी कर रही है तथा 100 से ज्यादा संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकारी प्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और समुदाय के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांवड़ यात्रा से लेकर रामलीला, दुर्गा पूजा और अब वाल्मीकि जयंती तक हर आयोजन को भव्यता, श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अलावा इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इंद्र राज सिंह, कपिल मिश्रा, विधायक गण और अनेक गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस दौरान श्री मिश्रा ने बताया कि वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 100 से अधिक जगहों पर सहायता दी गई है।
Now it's time to update you from Chennai's stories. Chennai Metro, the International Business Convention for Aerospace and Defence Industries, this will be held at Chennai from today to the 9th of this month. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin will inaugurate this convention. So this high-level conference will engage in a dynamic program where industry experts, they will provide insights into the latest advancements and also innovations in the aerospace domain. Other update from Chennai, this is also about Tamil Nadu Global Startup Summit. This will be held at Coimbatore on 9th and 10th of this month. It is one of the biggest startup events and a flagship initiative by Startup TN. The focus sectors will be deep tech, climate tech and life sciences, and it will be key themes driving showcases, sessions and collaborations throughout the summit.
जी, अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई में मुख्यमंत्री के अल्पकालिक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उभरते और रोजगार के अवसरों के लिए सालाना लगभग 75,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इसके अनुसार 9 अक्टूबर से 419 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 141 सरकारी तकनीकी स्कूलों में 2,506 से अधिक बैच शुरू होंगे। श्री लोढ़ा ने कहा कि इसका उद्देश्य कम समय में उद्योग संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना और कुशल पेशेवरों का एक समूह तैयार करना है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य आधुनिक पारंपरिक दोनों प्रकार के व्यवसायों को शामिल करना है। इसके अलावा महिलाओं, दिव्यांग लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए विशेष बैच की योजना बनाई जा रही है। पाठ्यक्रमों को सुलभ बनाने के लिए राज्य ने शुल्क की सीमा 1,000 से 5,000 प्रति माह तय की है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की वेबसाइट admission.dvet.gov.in के माध्यम से नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी ITI और सरकारी तकनीकी स्कूलों से भी संपर्क कर सकते हैं।
Now we are heading to Bengaluru. So the Karnataka government on Monday issued a circular banning the use of cold and cough syrups for children below 2 years of age. It also prohibited the prescription and use of cold drift cough syrup, which has been linked to the recent death of several children in Madhya Pradesh and Rajasthan, allegedly due to contamination. So the Department of Health and Family Welfare advised that for children aged 2 to 5 years, such syrups, they should be avoided unless clearly indicated and prescribed only after proper clinical evaluation. For older children, though, cough syrups, if necessary, must be used only after thorough clinical assessment in the lowest effective dose and shortest duration, while avoiding irrational multi-drug combinations. Very important update here.
अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। मौसम विभाग के अलीपुर मौसम कार्यालय ने उत्तर बंगाल में गरज के साथ छिटपुट बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और सोमवार से बारिश में कमी आने की संभावना जताई है। दूसरी ओर कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। इस बीच राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने कल उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में वर्षा से संबंधित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ग्राउंड जीरो पर स्थिति का जायजा ले चुकी हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से पर्यटकों को वापस लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है और भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के अलीपुर द्वार डिवीजन की पटरियों पर जल भराव के कारण कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए हैं और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
Now let's focus on Hyderabad, where the model code of conduct is now in effect in Hyderabad district following the announcement of by-elections to the Jubilee Hills Assembly constituency, this particular one, on November 11. So officials warn that carrying over 50,000 rupees in cash requires valid proof. DEO and GHMC Commissioner R.V. Karnan urged voters to verify electoral rolls, with claims and objections accepted until October 11. So voting will take place at 407 stations across 139 locations and counting. It will be on November 14 at Kotla Vijaya Bhaskar Reddy Stadium. EVM checks are complete. Authorities warned of strict action against model code violations, including FIRs, and urged the public not to spread fake or sensitive content. Police Commissioner Vijay Sajjanar assured full preparedness for peaceful polling.
और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल पहले जानते हैं। दिल्ली में आज आम तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम बारिश होने के आसार हैं। यहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
Yes, Manoj, and actually I would like to add here that several parts of Delhi and the surrounding NCR region, they woke up to light to moderate rainfall. Well, yes, and the sudden change in weather, it obviously led to cooler conditions in many areas. Also, if I talk about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky and there is a possibility of moderate rain there. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have again cloudy sky with one or two spells of rain. Minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature will be 24 degrees and a maximum temperature will be 30 degrees Celsius here.
जी। और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 7 अक्टूबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
Yes, Manoj, rightly said. So today, World Cotton Day. It's World Cotton Day, and the main theme of this day, Manoj, it is at Food and Agriculture Organization headquarters in Rome. So the main theme there, the fabric of our lives, and this shows how important cotton is in people's lives around the world. One of the most important crops in India, contributing majorly to economy, and is a very essential raw material for the textile industry, one of the largest industries in the country and India. Let me tell you, listeners, world's largest producer of cotton contributes over 25% of global production. So cotton is grown in more than 20 states across India. Let me tell you, listeners, these states, they include Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. And Manoj, very important to note here, it provides a major source of income for millions of farmers and also agricultural workers. And as a key export product, this generates significant foreign exchange for India. So this is, we are today talking about World Cotton Day.
जी. और आज ही के दिन 1919 में गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई.
We are taking you a little back from there. Cornell, a university in America, it opened in this year, in the year 1868.
1950 में आज ही के दिन मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी.
In 1952, Chandigarh became the capital of Punjab.
1992 में आज ही के दिन भारत में त्वरित कार्रवाई बल का गठन किया गया था. इसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूति पूर्वक और विशेषज्ञता पूर्वक निपटने के लिए हुआ था. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी ये बल नागरिक प्रशासन की मदद करता है.
Going Manoj a little back, In 1959, the hidden part of the moon was photographed by the Soviet Union spacecraft Luna 3.
2000 में आज ही के दिन WWF इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार हासिल किया. और 2004 में आज ही के दिन जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया. और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है.
जी,
आज पुण्यतिथि है के केलप्पन की. उनका जन्म 24 अगस्त 1889 को कालीकट, केरल में हुआ था. वे केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे. वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे. जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो के केलप्पन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े. वर्ष 1930 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गांधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही नामजद किया था. आजादी के बाद जब जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई तब के केलप्पन पार्टी में सम्मिलित हो गए और फिर बाद में लोकसभा के सदस्य चुने गए.
Well, listeners, we are also remembering another revolutionary, the one and only Durgavati Devi. Well, today it's her birth anniversary. She joined the freedom struggle and became one of the few women actively involved in the armed rebellion against the British rule, and alongside Bhagat Singh and other freedom fighters as well. She helped establish the HSRA. And Durgavati, she played a crucial role in it. She was instrumental in the ammunition to revolutionaries, and then she even sold her jewels to support the cause. She was dedicated to the fight for independence to in her life.
जी, आज पुण्यतिथि है गुरु गोविंद सिंह की. उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में हुआ था. वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं. वे 11 नवंबर 1675 को सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे और 1708 ईस्वी तक इस पद पर रहे. वे सिखों के सैनिक, संगति, खालसा के सृजन के लिए प्रसिद्ध थे. कुछ ज्ञानी कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब सत्य एवं न्याय का विघटन भी होता है, तथा आतंक के कारण अत्याचार, अन्याय, हिंसा और मानवता खतरे में होती है. उस समय दुष्टों का नाश एवं सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर स्वयं इस भूतल पर अवतरित होते हैं.
जी, वी आर टेलिंग यू अबाउट गुरु गोविंद सिंह. वेल, हिज टीचिंग्स दे कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस, एम्फसाइजिंग द पर्स्यूट ऑफ राइटियसनेस एंड द डिफेंस ऑफ द ओप्रेस्ड. हिज लेगेसी एंश्योर्स अ बीकन ऑफ सिख आइडेंटिटी एंड रेजिलियंस अगेंस्ट इनजस्टिस.
आज पुण्यतिथि है केदारेश्वर सेन गुप्त की. उनका जन्म दिसंबर 1894 में पूर्वी बंगाल में हुआ था. वे एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। केदारेश्वर विद्यार्थी जीवन में ही अनुशीलन समिति के पुलिन बिहारी दास के संपर्क में आए और शीघ्र ही उनकी गणना क्रांतिकारी दल के प्रमुख व्यक्तियों में होने लगी। शचिंद्र सान्याल उस समय उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के नेता थे। उनकी गिरफ्तारी और रास बिहारी बोस के जापान चले जाने के बाद केदारेश्वर को पार्टी को संगठित करने के लिए वाराणसी भेजा गया। उन्होंने वाराणसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया और शीघ्र ही पुलिस उनके पीछे लग गई, इसलिए वे बंगाल वापस चले गए। वहां भी उन्होंने फरार रहकर ही दल का काम आरंभ किया। 1917 में पुलिस की पकड़ में वे आ गए और 1919 तक हजारीबाग जेल में बंद रहे।
लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग अ म्यूजिशियन स्माइली लुईस। हाउ वंडरफुल नेम। ही इज अ रिदम एंड ब्लूज सिंगर, रिमेम्बर्ड फॉर हिज गिटार टेक्निक एंड ही हिट ऑन अ फॉर्मूला फॉर स्लो रॉकिंग स्मॉल बैंड नंबर्स लाइक द बेल्स आर रिंगिंग एंड आई हियर यू नॉकिंग एंड देन Other people also came up with similar songs, similar music that he practically invented. The song that I have chosen, this is I Hear You Knocking.
आज जयंती है बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध अख्तरी बाई फैजाबादी की। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारत की प्रसिद्ध गायिका थीं, जिन्हें दादरा ठुमरी गजल में महारत हासिल थी। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार पहले पद्मश्री तथा सन 1975 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें मल्लिकाए गजल के खिताब से नवाजा गया था।
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना।
ब्यूटिफुल वॉइस। Let me talk about another musician, a vocalist and a guitarist, singer-songwriter John Mellencamp, known for his brand for Heartland Rock. This emphasizes on traditional instrumentation. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Let's listen to his song, Small Town. Now let me talk about another musician. I found him while I was reading a book. Basically, I am talking about the singer Thomas Edward York, the musician best known as the singer and main songwriter of the rock band Radiohead. There is a song which is very, very famous amongst music players and his fans alike, music lovers alike. This is Creep.
Wish I was special. You're so very special. I'm a creep.
आज जन्मदिन है उषा खन्ना का। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में हुआ है। वे हिंदी सिनेमा में एक भारतीय संगीत निर्देशिका रही हैं। वे कुछ चुनिंदा महिला संगीतकारों में से एक हैं और पुरुष प्रधान संगीत उद्योग में सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल संगीत निर्देशकों में से भी एक हैं। उन्होंने दिल देके देखो से संगीत निर्देशक के रूप में पदार्पण किया था।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए,
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है।
आज जयंती है अरुण भादुड़ी की। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1943 को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। बंग विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। वे रामपुर के किराना घराने से संबंधित थे। वे बांग्ला गीतों और भजनों के सम्राट माने जाते हैं।
शघन घन बरसाए बरसाए कोई घिरे आसे।
और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। नमस्कार।